वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर।
रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी सी सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम युवा एवं विकास और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले पाठ से, जो लिया गया है समवेल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से 5, 8 से 12 एवं 14 से 16 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने ये कहते हुए भविष्यवाणी की,
धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने सुध ली है और उसका उद्धार किया है, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भरता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर कान भी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा, हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ, जो लिया गया था समुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से 5, 8 से 12 एवं 14 से 16 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार, जो लिया गया है संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 67 से 79 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं को छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए मैं तो देवदार के महल में रहता हूं, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी जाती है। नातान ने राजा को ये उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु ये कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? इसलिए मेरे सेवक दाऊद से ये कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इसराइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वो वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इसराइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार, जो लिया गया था संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 67 से 79 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
हमारे सभी युवा साथियों, युवा विकास के साथ मैं स्वतंत्र कुमार ओझा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमने विषय रखा है वर्तमान परिदृश्य और युवा वर्ग। साथियों, सभी तरह की घटनाओं और अफवाहों को परे हटाकर एक सत्य स्वर अपने युवा वर्ग के लिए कहना प्रासंगिक भी है और सर्वसम्मत भी है। युवा सृजन का कलाकार है, परिवर्तन का वाहक है और क्रांति की मशाल को थामे प्रगति का अग्रदूत है। हमारे देश की गंभीर समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार और इसके लिए किए जा रहे संघर्ष, अनशन आदि में भी आगे बढ़कर युवा इनका भागीदार रहता है। वो परिवर्तन भी चाहता है। ये परिवर्तन क्या और कैसा होगा, ये सारी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश भारत ही है। अब केवल क्रांति कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी किसी क्रांति की आंधी थमती है तो परिणाम क्या होते हैं, ये जानना समझना अहम मुद्दा होता है। अभी थोड़े समय पहले ही मिस्र में भी ऐसी आंधी उठी थी और युवा इसी तरह गुस्से में थे, तो वहां तख्ता पलट तो हुआ, लेकिन हालात सामान्य बनने में अभी समय लगेगा, सुबह अभी दूर है। इसी विचार से सभी जानना चाहते हैं कि हमारे यहां किस तरह की सुबह हमारे भारत के लिए अपेक्षित है, जरूरी है। हमारा भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। अब लोकतंत्र को पुरखों से मिली विरासत के रूप में एक स्थायी इमारत नहीं माना जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र निरंतर विकसित एक इकाई है और परिस्थितियों में बदलाव के साथ इसका आकार और स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। अब इस लोकतंत्र की इमारत के किसी भाग में यदि कोई दरार दिखाई दे तो उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। भारत में हमारे अपने लोकतंत्र के बारे में जानकारों का ये कहना है कि इसमें एक नई सोच की नई पीढ़ी की तादाद बढ़ती जा रही है और इनमें युवा वर्ग का प्रतिशत कुछ ज्यादा है। कहा जा रहा है कि युवा आंदोलनकारी लगातार जिद्दी और लड़ाकू प्रवृत्ति के साथ आमूलचूल बदलाव की मांग कर रहे हैं। इधर राजनीतिक और सत्ता दल परस्पर मतभेदों में उलझे हैं और प्रशासनिक मशीनरी भी अनेक प्रसंगों पर बेबस, लाचार और नाकामयाब साबित हुई है। लोकपाल बिल का आरंभ, उसकी गति और फिर उसका परिणाम सभी को ज्ञात है, तो असमंजस की स्थिति है। और अब तो अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव के परिणामों की ओर सबका ध्यान गया है और इसमें अनेक युवा चुनाव जीते हैं। तो साथियों, जाहिर है कि लोकतंत्र के मौजूदा हालात में युवा वर्ग को एक सार्थक और प्रभावशाली नेतृत्व मिलना ही चाहिए। इन पांच राज्यों के चुनाव परिणामों ने चौंकाया अवश्य है, किंतु जो भी पार्टी जीत कर आई है उसके नए चेहरे विशेषकर युवा वर्ग को एक नई सकारात्मक पहल के साथ अपनी विजय को प्रमाणित करना ही होगा, ताकि भ्रष्टाचार की कालिख में लिपटे गहराए माहौल से आम जन को प्रकाश की किरण दिखाई दे। एक नन्ही किरण ही प्रभावकारी परिवर्तन का स्वरूप दिखा सकती है साथियों, बशर्ते जनप्रतिनिधि इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाएं। इससे राहत की एक श्वास के साथ आम आदमी सहित समूचा परिवेश जीवन को सही मायने में जी सकेगा। स्मरण करें युवा दोस्तों, कवि कुल गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की उन पंक्तियों को जहां वे कहते हैं, मन हो निर्भय जहां ज्ञान युक्त हो जहां ऊंचा हो देश जहां भारत को उसी स्वर्ग में तुम जागृत करो, जागृत करो। तो साथियों, ये आह्वान युवा वर्ग के लिए ही तो किया गया है। अब कैसे पाएं निर्भय रहने और होने का सूत्र? तो अब अपने स्वविकास के कुछ आवश्यक टिप्स की जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखा जाए तो अनेक प्रकार की सच्चाइयों के सूत्र हमारे आसपास और हमारे पड़ोस में जैसे बिखरे पड़े दिखाई देंगे हमको। अपने शहर की दौड़ती भागती सड़क पर, जहां जिंदगी का हर पल साथ साथ दौड़ता भागता रहता है, इसी सड़क पर एक ट्रक भी जा रहा है और इस ट्रक के पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें, सुनिए। इस स्लोगन में लिखा है, दम है तो क्रॉस कर, दम है तो क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। अब इसे पढ़कर हो सकता है हमारे कुछ युवा साथियों को गुस्सा आ जाए, वो एक्साइट हो जाएं, तो अपना नियंत्रण नहीं खोएं और ओवरटेक करके आगे निकल जाएं। लेकिन ऐसा सड़क पर अच्छी तरह नजर डालकर ही करें, ताकि दूसरे वाहनों से टक्कर ना हो और अपना एक्सीडेंट भी ना हो। हाँ, अब इसी स्लोगन का अगला वाक्य है, बर्दाश्त कर। वाह वाह वाह, क्या अच्छा स्लोगन है साथियों। बर्दाश्त कर यानी सही अवसर की प्रतीक्षा कर। युवा साथियों, ईमानदारी से विचार करें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस स्लोगन को हम लागू कर सकते हैं, अपना सकते हैं। आगे निकलने के लिए बार बार हॉर्न बजाकर उत्तेजित क्यों होना, और फिर जो आगे जा रहा है उसकी शांति को भी क्यों भंग करना भाई। स्थिति को देखते हुए अवसर देखकर ही निर्णय लेने में भलाई है, और अवसर तो अवश्य मिलेगा, मौका जरूर मिलेगा, बस प्रतीक्षा करने की आदत डालना भी बहुत जरूरी है। इसमें सफलता मिलेगी और निर्भयता भी बनी रहेगी। इसी स्लोगन के शुरू में लिखा है, दम है। जी हां, तो इसमें जो अर्थ छिपा हुआ है ना, उसको ध्यान से समझें, उसकी समीक्षा करें। भाई, पड़ोसी के बेटे के पास बाइक है, आपके पास नहीं है, तो चढ़ने से, शोर करने से या बाइक वाले को फप्तियां कसने से भाई क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा यही हो सकता है कि या तो आप भी किसी तरह से कुछ जुगाड़ करके अपने लिए भी बाइक ले आए, या जी हां, या थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी शांति बनाए रखें। बाइक देर से ही सही आ तो जाएगी। तो युवा साथियों, ये बेहद अनुपम सूत्र है। अब चलिए आसपास हमारे क्या हो रहा है इसके बारे में भी थोड़ा झांकें, देखें, सुनिए क्या हो रहा है। नौकरी या कोई भी जॉब के तनाव से भरे माहौल की बातें चल रही हैं। जल्दबाज वाहन चालकों द्वारा बिना वजह हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे हैं। लोगों का बीच रास्ते पर या तो खड़े हो जाना या बिना कारण जोर जोर से बोलना, जिसका उद्देश्य निरर्थक है, तो ये आम नजारा है। और भी अनेक तरह के शोर हैं ही, पर ये ज्यादातर ये हैं। अब ये हमारे जीवन में विषमताएं खड़ी करें, इससे पहले ही हमें इनसे बाहर निकल आना चाहिए। निर्भयता के साथ ज्ञानयुक्त जीवन का यही संदेश टैगोर ने भी दिया है। एक सामान्य स्लोगन को सही ढंग से समझा जाए तो वो हमें सुख और संतोष के साथ जीवन जीना सिखा सकता है। और इसीलिए हमने चर्चा की थी कि ऐसी अनेक सच्चाइयों के सूत्र तो हमारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं साथियों। तो मेरे प्यारे युवा दोस्तों, अभी तक हमने आंदोलनों, चुनाव और वो दम वाला आम स्लोगन और गुरुदेव टैगोर का कथन, इन सब पर बातचीत की। कुछ जीती जागती सच्चाइयों के सूत्र को भी आप समझ लें। इन तमाम तथ्यों के बीच एक सत्य स्वर सदैव युवा वर्ग का संबल रहा है, और वो ये है कि चैलेंज को वे हमेशा ललकारते भी रहे हैं। उन्होंने जोर से दौर को बदला है। कला, साहित्य, विज्ञान और क्रीड़ा के क्षेत्र में अपने साहसी कर्मों से इतिहास रचा है। ऐसा नहीं कि इन सब के बीच वे अवसाद से मुक्त रहे हों, वे दुखी नहीं हों, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके अपने जोश और जज्बे को देखते हुए हमें ये लगता है कि नाना प्रकार की विसंगतियों से उपजे अवसाद के बावजूद वे अवसाद को धता भी बताते रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मनचाही सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। अनेक अनेक असफलताओं से जूझना पड़ता है, लेकिन अंतर प्रेरणा का प्रकाश उन्हें हर प्रकार के अंधेरों में राह दिखाता ही है। संकट के सैलाब में जीवटता से जूझकर सुरक्षित किनारे पर पहुंचने का नाम सिर्फ और सिर्फ युवा के मस्तक पर लिखा जाता है। और ये परिदृश्य चारों ओर हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। भारतीय युवा के सामर्थ्य को विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों ने सराहा है, स्वीकारा है। साथियों, हमारी युवा पीढ़ी के हर सदस्य में प्रतिभा पुष्प में सुगंध की तरह छिपी हुई है। बस आवश्यकता है इस सुगंध को महसूस करने वाली श्वास की, जो हरेक के पास है। और वर्तमान आपाधापी और तीव्र प्रतियोगिता के समय में हमारी युवा पीढ़ी अपने अदम्य साहस से पग प्रति पग, पल प्रति पल चुनौतियों का सामना कर रही है, ये हर्ष की बात है। और बिल्कुल अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, और वो ये है कि जो अभिभावक हैं, जो सीनियर हैं, उन्हें युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते रहना है, उनके हौसलों को बनाए रखना है। यदि उनकी कमियां निकालते हुए उन्हें प्रताड़ना दी जाती है तो ये सही नहीं है। समय इतना तीव्र गति से बदल रहा है कि कदम चलने की बजाय दौड़ने में लगे हुए हैं, और ऐसे में हमारे युवा साथी अपने सीनियर्स का प्यार चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, ताकि वो शांत चित्त बनाकर अपना कार्य कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।
दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।